Manthan.
नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती जे कृष्णन। आज के हमारे चर्चा का विषय है पोषण पखवाड़ा 2026, कुपोषण मुक्त भारत। हमारे साथ स्टूडियो में है मोनिका सिंह, निदेशक पोषण अभियान, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
धन्यवाद भारती।
कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन की गंभीर समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने पोषण अभियान 2018 में लॉन्च किया। पोषण पखवाड़ा क्या है और इसका महत्व आप हमें समझा सकते हैं?
बिल्कुल भारती, धन्यवाद। पोषण पखवाड़ा जो है वो पोषण अभियान जो कि 2018 में भारत सरकार ने यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जारी किया था कार्यक्रम है, जिसमें पोषण पखवाड़ा और पोषण माह इन दोनों को जन आंदोलन के रूप में हर वर्ष पूरे देश में मनाया जाता है। पोषण पखवाड़ा जो है वो 15 दिन की गतिविधियों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, जो कि सामूहिक रूप से पूरा देश, सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश मिलकर अपने अपने राज्यों में मनाते हैं। और साथ ही मंत्रालय स्तर पर बहुत सारे भारत सरकार के बड़े बड़े एवं छोटे मंत्रालय जो कि कहीं ना कहीं पोषण से जुड़े हुए हैं, वो इस पर कार्य करते हैं और मिलकर सामूहिक गतिविधियां संचालित करते हैं। इसका महत्व जो है वो मैं इस तरह से बता सकती हूँ कि पोषण नाम से ही पता चल जाता है कि यदि कुपोषण है तो नुकसान क्या हो सकता है और यदि पोषण है तो क्या फायदे हो सकते हैं। इसीलिए इसे एक अभियान के रूप में वर्ष 2018 से चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 150 से ज्यादा गतिविधियां अभी तक रिपोर्ट की जा चुकी हैं सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा। एवं साथ ही हर वर्ष इस पोषण पखवाड़े में, जो कि इस वर्ष 8वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, इसका थीम इस वर्ष अलग होगा, पिछले वर्ष का थीम अलग होगा और उन थीम यानी कि मुख्य मुद्दों के अलावा कुछ सब थीम्स भी रखे जाते हैं जो कि उसी मेन थीम के चारों ओर कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं उस मेन थीम से, और उस मेन थीम को कार्यान्वित करने के लिए ये सब थीम जो है वो बहुत बड़ा कार्य करते हैं।
इस साल का थीम है जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना। मैम, लाइफ के इन पहले 6 वर्षों में ऐसा क्या है जो हमें उसे इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए?
देखिए भारती, मैं ये समझती हूँ कि बच्चे के जीवन के पहले 6 वर्ष वो वर्ष होते हैं जब वो एक नन्हा जीव होता है, ना तो वो बालक ही होता है, ना ही वो कभी बड़ा मानव समझा जाता है, वो एक जीव होता है जिसका जन्म होता है और पहले 6 वर्ष में वो चीजें वो सीखता है, वह व्यवहार वो सीखता है, वह बातें वो सीखता है जो उसके जीवन की नींव रखते हैं। और वो जीवन में अच्छी आदतें, व्यवहार और अच्छी नींव तभी रखी जा सकती है जबकि उसके मस्तिष्क का विकास पूर्ण रूप से हो, सही रूप से हो। तो इस वर्ष हमने उस थीम को आगे लाने का प्रयास किया है जिसमें कि सबसे अधिक आवश्यकता होती है बच्चे पर ध्यान दिए जाने की। जिस घड़ी, जिस समय, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उस दिन से ये एक माँ की ही नहीं पूरे समाज की जिम्मेवारी हो जाती है कि उस बच्चे का पोषण ठीक प्रकार से हो और उसके दिमाग का विकास बिल्कुल उसी प्रकार से हो जैसा कि होना चाहिए, जिससे कि वो भविष्य में एक अच्छा नागरिक बन सके और देश को और समाज को अपनी अच्छी सेवाएं दे सके।
सरकार और आंगनवाड़ी सेंटर्स ने पोषण पखवाड़े के अवसर पर कई एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की हैं। आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि इन एक्टिविटीज में हो क्या रहा है?
इस साल जो हमने एक्टिविटीज आयोजित की हैं, उसको बताने से पहले मैं आपको इस साल का थीम तो चूंकि आपने बता ही दिया है, मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट यानी कि दिमाग का या मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास जीवन के पहले 6 सालों में। इसके साथ ही जो सब थीम्स हमने इस साल रखे हैं उनमें पहला थीम था मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन यानी कि माँ और बच्चे का पोषण। दूसरा थीम था अर्ली स्टिमुलेशन फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, इसका मतलब है कि बच्चे के विकास के लिए यानी कि 0 से 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके दिमागी विकास के लिए उनको अर्ली बहुत जल्दी उनके अंदर उद्दीपन को पैदा करना ताकि वो चीजों को समझ पाए, देखना सीखें, पकड़ना सीखें, बैठना सीखें, बताना सीखें और वो सब सही तरीके से हो, अर्ली स्टिमुलेशन की हम बात करते हैं। जो बच्चे कहीं ना कहीं ये सब चीजें देरी से कर रहे हैं तो वो पकड़ना है हमें कि क्या कारण है, और प्लस नॉर्मल बच्चों में जल्दी वो चीजें प्रेरित होने लगे, ऐसा हमारा सब थीम है। तीसरा हमारा जो सब थीम है वो है कि हम शिक्षा को, जो कि अर्ली इयर्स की शिक्षा होती है, शुरुआत के कुछ सालों की शिक्षा है, 3 से 6 साल तक के बच्चों की जो शिक्षा है उसको हम खेल आधारित बनाएं, प्ले बेस्ड करें उसको ताकि उसका सही मस्तिष्क का विकास हो सके और बच्चे की स्वास्थ्य, बच्चे का जो हेल्थ है वो भी ठीक से ठीक रहे और अच्छा प्रकार से वो बच्चा बड़े होकर सही बातें सीख पाए। चौथा जो हमने रखा है वो इस समय देखा जाए तो तात्कालिक रूप से एवं समसामयिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये है कि कम्युनिटी और पेरेंट्स का रोल है कि वो बच्चों में जो स्क्रीन टाइम है उसको कम से कम करें। स्क्रीन टाइम देखिए, हम सबके बच्चे कहीं ना कहीं हर वक्त मोबाइल में रहते हैं, हम ऐसा देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं और मान भी रहे हैं। और आजकल हालात ऐसे हैं कि बच्चे जो हैं वो जीवन का समय कहिए चाहे अपने दिन का मैक्सिमम टाइम, सबसे ज्यादा समय जो है मोबाइल पे व्यतीत करते हैं। कई कारण है इसके, तो हम ये मानकर कि हमें वापस से अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम उनका कम करना है और उनको खेल आधारित गतिविधियों में लगाना है, इसलिए हमने इस चौथे थीम को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हुए इस बार इस लिस्ट में सम्मिलित किया है और सभी राज्यों से हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो इस पर कार्य करें। पांचवा थीम जो है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है, कि हमें आंगनवाड़ी, चूंकि बहुत बड़ा एक स्थान होता है बच्चे के लिए, माँ के आंगन के बाद दूसरा आंगन है जहां पर बच्चे पलते बढ़ते हैं, तो आंगनवाड़ियों को मजबूत करने के लिए हमने इस बार समुदाय के सपोर्ट की बात की है कि समुदाय आगे आए और अपनी ओनरशिप के साथ ही वो इन आंगनवाड़ियों को मजबूत बनाने में योगदान करे। ये हमारे पांच थीम थे। अब इनमें जब हम गतिविधियों की बात करते हैं तो हमने बहुत प्रकार की, नाना प्रकार की गतिविधियां हम रखते हैं हर वर्ष, और इसमें राज्यों को पूरी छूट होती है कि वो अपनी तरफ से भी गतिविधियां करवा सकते हैं जैसा कि वो उचित समझते हैं। देखिए, बहुत बड़ी गतिविधि के रूप में जो हम इस बार चाह रहे हैं कि हम इसे करें और काफी हद तक ये हो भी रहा है, वो है पोषण पे चर्चा। जब तक एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र जो है वो पोषण पे चर्चा नहीं करेगा, तब तक वो वास्तव में स्वस्थ समाज नहीं कहलाएगा, स्वस्थ राष्ट्र नहीं कहलाएगा। तो पोषण पे चर्चा सबसे बड़ा थीम है एक्टिविटी करवाने की बात अगर हम कर रहे हैं। दूसरा, हमने इस बार हमारी जो पारंपरिक जानकारी है उसको बाहर लाने के लिए हमने दादी नानी की कहानी पोषण की जबानी इस बार हमने ये कहा है, ताकि हमारे बुजुर्ग आगे आए और वो बताएं कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी सेहत को आज तक बनाए रखा है, कैसे वो आज तक तंदुरुस्त हैं और क्या आदतें उन्होंने अपनाई जिसके कारण वो एक लंबा जीवन जी रहे हैं, साथ ही स्वस्थ जीवन भी जी रहे हैं। इसके अलावा फैमिली प्ले टाइम की हम बात करते हैं कि आओ परिवार के बच्चों के साथ मिलकर हम खेलें, उनके खेल में हम सहयोगी बने। उसके अलावा वो जो हम दिमाग के विकास की बात करें, उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है, बच्चा अभी अभी दुनिया में आया है और वो माताएं हैं, परेशान हैं, उन्हें नहीं पता कि बच्चों का विकास कैसे करना है, कई प्रकार से समस्याएं आती हैं, कैसे खाना है, कैसे खिलाना है, क्योंकि आजकल हमारे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, एकाकी परिवार होते जा रहे हैं, तो नहीं पता होता है, जानकारी नहीं होती है। इसके लिए हमने प्रेरित किया है हमारे राज्यों को कि आप कॉम्पिटिशन्स करवाइए या कुछ इस प्रकार के मेले आयोजित कीजिए जिसमें जानकारी मिले, कुछ ऐसे सेशंस कराइए जिसमें जानकारी मिले। और जानकारी के लिए ही नहीं कि वो नई माँ जो है वो आएगी वहां पर, इसके लिए उनके परिवार के लोग, समाज के लोग, कम्युनिटी के लोग आगे आए, वो उस जानकारी को ले और उस नई माँ तक पहुंचाए ताकि वो समझ सके कि उसके बच्चे को उसे कैसे 6 साल में सही रूप से बड़ा करना है, क्योंकि 6 महीने तक बच्चा जो है सिर्फ माँ का दूध पीता है। तो इन बातों को भी हमें बढ़ावा देना है, सही जानकारी पहुंचानी, इसके लिए भी हमने बहुत सारे सेशंस ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट से कहा हुआ है और वो कर भी रहे हैं। इसके साथ ही बहुत जरूरी है कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तो उसे क्या खिलाया जाए। हम ये तो कह देते हैं कि उसे ठोस आहार खिलाएं, बट ठोस आहार में क्या खिलाएं ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमने इस बार कुकिंग कॉम्पिटिशन्स के ऊपर बहुत बढ़ावा दिया है कि वो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए, वो बच्चे जिनका अन्न प्राशन होना है जब वो 6 महीने के हो जाएंगे, तो उन्हें कैसे शुरुआत करें, कैसे उन्हें अंग्रेजी में से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहा जाता है, तो कैसे ब्रेस्ट फीडिंग से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे आना है और क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, ये सभी बातों पे हम ध्यान देते हैं। इसके लिए हम कुछ एक दिन होता है हमारे VHSND डे, जिसे कि कई मंत्रालय और मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वो एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिलकर गांवों में और शहरों में दोनों जगहों पर मनाते हैं, उसको बोलते हैं VHSND डे। इसमें कई प्रकार की गतिविधियां होती हैं, बच्चों का वजन मापने से लेकर, माताओं के वजन मापने से लेकर, किशोरी बालिकाओं के ऊपर ध्यान देने से लेकर, कई प्रकार का सैनिटेशन की एक्टिविटीज की सफाई और स्वच्छता का कैसे ध्यान रखें, इस प्रकार से पंचायत भी सम्मिलित होती है और इसमें समुदाय भी सम्मिलित होते हैं। तो जब पोषण पखवाड़ा होता है तो हम ये कहते हैं कि विशेष रूप से VHSND डेज मनाए जाएं, ताकि जो एक नॉर्मल VHSND डे होता है उस पर जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें जितने भी लोग आते हैं उससे बढ़ चढ़ कर कई गुना लोग जो है वो इस स्पेशल VHSND डे पे आए, क्योंकि ये एक जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम है जो कि गांव एवं वार्ड स्तर पर दोनों ही जगह मनाया जाता है। इस प्रकार से हमने कई प्रकार की गतिविधियों का जिक्र किया है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि राज्य खुद भी अपनी गतिविधियां लेकर आगे आ सकते हैं और आज ऐसा कर रहे हैं।
बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये सब थीम पोषण पखवाड़े का, प्ले बेस्ड लर्निंग यानी खेल आधारित शिक्षा, स्पेशली 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ये खेल और पढ़ाई को जोड़ने का बेनिफिट्स क्या है और इसे करते कैसे हैं?
खेल आधारित पढ़ाई इसलिए जरूरी हो गई है क्योंकि पढ़ाई को एक बोझ नहीं है। पढ़ाई वही है जो हमारे आसपास हम देखते हैं, उसी चीज को विषय बनाकर पढ़ाया जाता है। लेकिन विषय कभी कभी इस प्रकार से बोझिल हो जाते हैं कि लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो वही बात अगर बच्चों को हम खेल खेल में सिखा दें कि देखो बच्चों ऐसा नहीं ऐसा होता है, ए ऐसे नहीं ऐसे बनता है, या का ऐसे नहीं ऐसे बनता है, तो जब उस का को हम मुंह से बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे, तुमने का ऊपर से सीधे हाथ पे घुमाना है, उल्टे हाथ पे पूरा गोला करना है और सीधे हाथ पे पेट कटा होगा, इस प्रकार से बताया जाता है। लेकिन यदि हम उसी का को करके ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे या जो कई प्रकार के टॉयज आते हैं उनके माध्यम से अगर हम सिखाते हैं कि का किस प्रकार से बनता है, तो मुझे लगता है कि बच्चे जीवन भर याद रखेंगे। इसलिए प्ले बेस्ड लर्निंग बहुत बड़ी चीज है। हमारे मंत्रालय ने 2 प्रकार के सिलेबस भी लॉन्च किए हैं जो कि हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से जुड़े हुए हैं। एक नवचेतना है और एक आधारशिला है। नवचेतना उन बच्चों के लिए है जो कि बहुत छोटे हैं, जिनकी उम्र 0 से लेकर 3 साल तक की है। आधारशिला वो बच्चे हैं जो 3 साल से 6 साल तक के हैं। और उस सिलेबस को हमने सभी राज्यों को दिया हुआ है ताकि सभी आंगनवाड़ी पर एक समय में बच्चे वही ज्ञान प्राप्त करें जो कि उस उम्र के बच्चों के लिए सही है। बहुत साइंटिफिकली उसे बनाया गया है, समय से बनाया गया है और ध्यान रखा गया है कि किसी भी प्रकार का मानसिक बोझ इस उम्र के बच्चों पर ना पड़े। इस प्रकार से हमने खेल आधारित गतिविधियां भी शामिल की है, सिलेबस भी बनाया है और ये भी ध्यान दे रहे हैं कि दिमाग का एकदम सही विकास हो ताकि बच्चे उस उम्र में उस सिलेबस को सही तरह से समझ पाए और ग्रहण कर पाए।
ये तो हमने सुन लिया कि हमारी सरकार क्या कर रही है, लेकिन परिवार और समुदाय का क्या योगदान हो सकता है कि ये प्रोग्राम एक सक्सेस हो?
परिवार और समुदाय के बिना यही नहीं, कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि समाज के लिए ही सरकार होती है। सरकार वेलफेयर स्टेट कही जाती है, यानी कि लाभ के लिए नहीं होती है बल्कि एक प्रकार से भले कार्य के लिए होती है। तो जब सरकार यानी कि वेलफेयर स्टेट जो है वो कोई भी कार्यक्रम लेकर आती है तो उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं सीधे ही रूप से हमारा समाज जुड़ा होता है, हमारी समुदाय जुड़े होते हैं। और पोषण अभियान तो इस प्रकार का कार्यक्रम है जिसे बनाया ही इस तरह से गया, इसका डिजाइन ही ऐसा है कि जिसमें समुदाय ही जुड़ेगा और समुदाय खुद आगे आकर वो आंगनवाड़ी से जुड़ी सभी गतिविधियों में भाग लेगा और छोटे बच्चों से लेकर गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाने वाली माताएं जो हैं या जो किशोरी बालिकाएं हैं उनके स्वास्थ्य एवं सेहत के लिए और उनके पोषण के लिए पूरा प्रयास करेगा।
इंडिजिनस नॉलेज यानी स्वदेशी ज्ञान हमने कुपोषण के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे यूटिलाइज करा है?
देखिए इंडिजिनस नॉलेज जिसे कि हम स्वदेशी ज्ञान कहते हैं ये कोई नई चीज नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि हमारे माता पिता के समय से या उनके माता पिता या कुल मिला के कहा जाए हमारे पूर्वजों के समय से जो ज्ञान चला आ रहा है उसे ही इंडिजिनस कहा जाता है और आज कहीं ना कहीं वही ज्ञान काम आ रहा है। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो वो इसीलिए कहा जाता है कि पहले जो था वो कहीं ना कहीं सही थे, कहते हैं बुजुर्गों ने जो कहा है वो ठीक ही कहा होगा, तो वो बात लागू होती है। देखिए हमने इंडिजिनस ज्ञान को लागू करने के लिए मंत्रालय स्तर पर पोषण वाटिका की बात कही है जो कि अभी देश में फलीभूत हो रही है कि हर आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को जो गर्म पका हुआ भोजन देते हैं उस खाने को बनाने के लिए उसी आंगनवाड़ी वाटिका से उसी पोषण वाटिका से इंग्रेडिएंट्स को या उसमें उगने वाले छोटे छोटे पौधे जो भी हम वहां पे मसाले उगाना चाहते हैं वहीं से उठाओ और वहीं से खिलाओ ताकि हम बच्चों को ताजा भोजन खिला सके या कम से कम उसमें इंग्रेडिएंट्स ही ताजे हों ताकि उनको नुकसान ना हो। और प्लस गर्म पका हुआ भोजन होता है, 3 से 6 साल के बच्चे आंगनवाड़ी पे आते हैं उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सेहत को इंडिजिनस नॉलेज ही डायरेक्टली इम्प्रूव कर रही है। उनकी सेहत के लिए हम उस ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहते हैं और हम कर रहे हैं।
आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे घर बैठे श्रोताओं को ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपना भाग कर पाए, कि वो कुपोषण मुक्त भारत की तरफ हमें लेके चल सके?
घर बैठे श्रोताओं के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि वो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी का हिस्सा है और कम्युनिटी होने के नाते आगे आए, इन छोटे बच्चों के दिमागी विकास का हिस्सा बने कि स्वस्थ विकास इन छोटे बच्चों का। अपने आसपास जो उन्हें इस प्रकार की माताएं बहनें दिख रही हैं जो कि नई माँ है और अकेली हैं जिन्हें की प्रेम एवं जानकारी की आवश्यकता है उन्हें जानकारी दे, और स्वयं के लिए उनके लिए मेरा ये संदेश है कि खुद भी वो स्वस्थ और डाइवर्सिफाइड डाइट अपनाएं जो कि उनके जीवन काल में उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बहुत फायदा करेगी।
धन्यवाद मैम। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
मंथन।